आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। महाभारत के पात्रों में महाबली भीम या भीमसेन पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। महाराज पांडु ने युधिष्ठिर के जन्म से अत्यंत प्रसन्न होकर पत्नी कुंती से एक बलवान पुत्र की मांग की थी। तब पवन देव के वरदान से माता कुंती ने भीम को जन्म दिया था। भीम सभी पांडवों में सबसे बलशाली और श्रेष्ठ कद काठी के थे और युधिष्ठिर के सबसे प्रिय भी थे। गदाधारियों में भीम के समान कोई नहीं हुआ। हाथी की सवारी करने में भी कोई भीम की बराबरी नहीं कर सका। उनमें हजार हाथियों का बल था। भीम के क्रोध से तब के सब योद्धा डरते थे, क्योंकि भीम का क्रोध एक नहीं कई कई धृतराष्ट्रों को समाप्त कर सकता था। स्वयं देवराज इंद्र भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। वनवास काल में भीम ने परिवार की रक्षा हेतु अनेक राक्षसों का वध किया, जिनमें बकासुर और हिडिंबासुर जैसे राक्षस भी थे। भीम ने अज्ञातवास में राजा विराट के साले कीचक का भी वध कर दिया था और द्रौपदी की रक्षा की थी। गदा युद्ध में भीम अद्वितीय थे। वे गुरु द्रोणाचार्य और बलराम जी के शिष्य थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य और बलराम जी दोनों से ही गदा युद्ध की शिक्षा पाई थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में राजाओं की संख्या कम हो रही थी। ऐसे में भीम ने मगध के क्रूर शासक जरासंध का वध करके 86 राजाओं को मुक्त कराया था। भीम के बल के बारे में उनके जन्म के समय का एक बड़ा रोचक प्रसंग है। भीम को जन्म देते ही माता कुंती उन्हें महाराज पांडु के पास ले गई। महाराज पांडु ने पुत्र को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आशीर्वाद दिया और उसके बाद रोज की तरह वे अपना ध्यान लगाने चल दिए। माता कुंती उनकी प्रतीक्षा में कुटीर के बाहर ही बैठ गई। ऐसे में अचानक वहां एक बाघ आ धमका। बाघ को देखकर कुंती बहुत डर गई, वो उठकर भागी। माता कुंती इतना डर गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथ से भीम छूट गया। जब भीम को ढूंढते हुए कुंती महाराज पांडु के कुटीर के पास आई तो उन्होंने देखा कि शिशु भीम एक शिला पर गिरे पड़े हैं और वो शिला दरक गई है। जब महाराज पांडु ने आकर यह सब देखा और सुना तब उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम भीम रखा था। भीम ने 10,000 हाथियों का बल पाया था। हुआ यूं था कि भीम के अपरिमित बल से ईर्ष्यालु दुर्योधन त्रस्त हो गया था। जब सभी पांडव हस्तिनापुर आ गए तब एक दिन दुर्योधन जल क्रीड़ा के बहाने पांडवों को गंगा तट पर ले गया। सबने मिलकर जल क्रीड़ा का खूब आनंद लिया। जल क्रीड़ा के बाद जब भीम जल से बाहर आए तो उन्हें बड़ी भूख लगी। स्वाभाविक है, दुर्योधन ने भोजन का प्रबंध भी किया ही था। भीम ने जब भोजन की मांग की तो दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में कालकूट विष मिला दिया। भोजन ग्रहण करने के बाद भीम बेहोश हो गए। तब तक शेष पांडव भी थककर सो गए थे। उसके बाद दुर्योधन और दुःशासन ने शकुनी के साथ मिलकर बेहोश भीम को लता बेलों से बांधकर गंगा में फेंकवा दिया। प्रातःकाल शेष पांडवों ने भीम को वहां ना पाकर सोचा कि वो घर वापस चले गए होंगे। वो सब भी घर चले गए। भीम उस बेहोशी की अवस्था में नागलोक जा पहुंचे। वहां सर्पों द्वारा उसे डसे जाने से विष का प्रभाव कम हो गया। होश में आते ही भीम ने उन सर्पों को पटक पटक कर मारना शुरू किया। तब सारे सर्प नागराज तक्षक के पास पहुंचे। तक्षक ने भीम को दंड देने का आदेश दिया। उसी समय वहां माता कुंती के नानाश्री नागराज आर्यक आ गए। उन्होंने भीम को पहचान लिया और तक्षक से आग्रह करके भीम को अमृत सोम रस पिलाया। तक्षक ने भीम को बताया कि अमृत सोम रस के एक कटोरे में 10,000 हाथियों का बल है। भीम उसके 10 कटोरे पी गए, जिससे उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया था। असल में भीम के पेट में वृक नामक अग्नि थी, जिससे विष भी पच जाता था। विष का दुष्प्रभाव नहीं हो पाता था, इसीलिए भीम को वृकोदर भी कहा जाता है। उनकी 3 पत्नियां थी। भीम को पहली पत्नी द्रौपदी से सुत सोम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राक्षसी हिडिंबा को भीम से प्रेम हो गया था। हिडिंबा से भीम को घटोत्कच नामक राक्षस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बलंधरा भीम की 3री पत्नी थी, जिससे भीम को सर्वांग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महाभारत युद्ध का वो 14वां दिन था। उस दिन रात्रि में भी युद्ध चलता रहा। उस रात पांडवों ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। भीम उस दिन बहुत क्रोधित थे। भीम ने युद्ध में घूंसों और थप्पड़ों से ही कलिंग राजकुमार और धृतराष्ट्र पुत्र दुष्कर्ण और दुमर्द का वध कर दिया। उसके बाद भीम ने बालिक और दुर्योधन के अन्य 10 भाइयों सहित शकुनी के 5 भाइयों का भी वध कर दिया। असल में महाभारत के युद्ध में भीम ने ही अधिकांश कौरवों का वध किया था। द्रौपदी के चीर हरण का प्रतिशोध लेने के लिए भीम ने दुःशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, भीम के द्वारा दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हुआ था। महाभारत के भयंकर युद्ध का समापन योद्धाओं की मां, बहन और पत्नियों के रुदन और मृत वीरों की अंत्योष्टि क्रिया से हुआ। ऐसे में जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर पहुंचे, तो उन्हें रोती हुई द्रौपदी, पांडव, सात्यकी और श्री कृष्ण भी मिले। धृतराष्ट्र मन ही मन अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। विशेषकर भीम पर वे सबसे ज्यादा क्रोधित थे। जबकि व्यास जी और धर्मात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को पर्याप्त समझा बुझा चुके थे कि पांडवों पर उनका क्रोध अनावश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित भी है। इस युद्ध के मूल में पांडवों के प्रति कौरवों का लगातार अन्याय कृत्य ही था। अतः ये जनसंहार तो होना ही था। फिर भी युधिष्ठिर को गले लगाने के बाद धृतराष्ट्र अत्यंत क्रोध में भीम से मिलने के लिए आतुर हो उठे। वासुदेव श्री कृष्ण से क्या छिपा था? वे धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है भली भांति जानते थे। उन्होंने भीम को पीछे हटा, उनके स्थान पर लोहे की प्रतिमा खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र धर्म से विचलित हो भीम को मार डालना चाहते थे, क्योंकि भीम ने ही अधिकांश कौरवों का वध किया था। धृतराष्ट्र ने भीम समझकर लौह प्रतिमा को अपनी भुजाओं में लपेट लिया। उस प्रतिमा को धृतराष्ट्र ने पीस डाला, प्रतिमा टूट गई। पर ऐसा करने से उनकी छाती पर चोट लगी और मुंह में रक्त भर आया। फिर भीम को मरा जानकर वे अचानक रोने भी लगे। सब के सब ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। तब श्री कृष्ण भी क्रोधित हो उठे। वे धृतराष्ट्र से बोले, जैसे यम के पास कोई जीवित नहीं रहता, वैसे ही आपकी भुजाओं के बीच भीम भला कैसे जीवित रह सकता था? आपका उद्देश्य जानकर ही मैंने आपके पुत्र द्वारा बनवाई गई भीम की लौह प्रतिमा आपके सम्मुख रख दी थी। भीम के लिए विलाप मत कीजिए, भीम जीवित है। महाभारत में भीम के अद्वितीय बल का गुणगान सचमुच आश्चर्यचकित कर देता है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।